نحمده ونصلي على رسول الكريم. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، ساری کی ساری کائنات کو بنانے والے بھی اللہ پاک اور ساری کی ساری کائنات کو چلانے والے بھی اللہ پاک. کائنات کا ایک ایک ذرہ، پانی کی ایک ایک بوند، درخت کا ایک ایک پتہ، جس طرح پیدا ہونے میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے، ایسے ہی استعمال ہونے میں بھی اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے. یہ کائنات خود نہیں بنی بلکہ اللہ نے بنائی ہے، اور یہ خود بخود نہیں چل رہی. اللہ پاک کا ایک بہت بڑا غیبی نظام ہے جس کے ماتحت یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ رب العزت کی ذات ساری مخلوق سے بے نیاز. ایک ہے ظاہرہ نظام جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے، میاں بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہے، زمین سے غلہ نظر آ رہا ہے، دکان، تجارت، ملازمت، اس سے روزی نظر آ رہی ہے، بادلوں سے بارش نظر آ رہی ہے. یہ ایک ظاہرہ نظام ہے، یہ حقیقی نظام نہیں ہے. حقیقی نظام وہ نظام ہے جو اللہ پاک کا براہ راست نظام ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے. میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے، ایک شادی، دو شادی، تین شادی، چار شادی، اولاد کا نام و نشان نہیں، زمین ہے لیکن غلہ نہیں ہے، بادل ہیں لیکن بارش نہیں ہے. ہمارے کوئٹہ میں بادل آتے ہیں، جھوم کے چلے جاتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں برستا. تو یہ سارے ہمارے بستن ہیں، ان میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ رب العزت کرنے میں ساری مخلوق سے بے نیاز، جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں وہ کر دیں. ان کے ارادے کا نام وجود ہے. پیدائش پہ آ جائیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں. آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے. اور پھر پیدائش کے اوپر آ جائے تو مرد کے اندر سے عورت کو پیدا فرما دیں. حالانکہ بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن ہماری دادی جان کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دی. اور ہماری دادی جان جو پیدا ہوئی، کہتے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئی. عورت کو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں. آج ساری دنیا الا ماشاءاللہ، آج ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ عورت کو بے حیا بنا دیا جائے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے. یہ تو کچھ ملک بچے ہوئے ہیں، ہم اس پر بڑا شکر ادا کریں. کچھ ملک والوں نے قانون بنایا ہوا ہے اور کپڑے کی مقدار مقرر کی ہے کہ اس سے زیادہ کپڑا بدن پر نہیں رکھ سکتی. اور ابھی مشورے میں، وہاں ریمنٹ کے مشورے میں ایک ملک والے آئے، ان کے آنسو جاری تھے. وہ کہنے لگے ہمارے ملک والوں نے حکم دے دیا کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی. اب ہماری مستورات نے وقت بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ برقعے بھی پہنتی ہیں، تو اب ہمارا کیا ہو؟ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا پہلا کام اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا، اللہ پاک کے کمالات کو بیان کرنا، اللہ پاک کی جنت کو بیان کرنا، اللہ کی دوزخ کو بیان کرنا، اللہ کے فرشتوں کو بیان کرنا، کیونکہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، مال والوں کو جانتے ہیں، عہدے والوں کو جانتے ہیں، زمینداروں کو جانتے ہیں، باغ والوں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں جانتے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ ایک ایسی پیاری ذات ہے، ایسی مقدس ذات ہے، وہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی. اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ او میرے بندے، میں نے تجھے انسان بنایا ہے تو تو انسان بن کر زندگی گزار. تو خلق تو بے یدیہ ہے، آسن تقویم ہے، ساری مخلوق کے اندر حسین ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. تو جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کیوں قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کا ناجائز مال کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان بن کر رہا ہے. مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا لفظ انسان جو ہے یہ ان سے نکلا ہے، اور انس کا مطلب ہے محبت. تو جس شخص میں محبت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا تعارف کراتے رہے اور بتاتے رہے. اب جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی کیسی پاکیزہ ذات ہے اور اس کے ایسے لامحدود خزانے ہیں اور اس نے ایسی جنت بنائی ہے، تو پھر پیغمبروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے. جیسے کوئی پلازہ تیار ہو رہا ہو نا، تو اس کے فلیٹس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں فلیٹ کس طرح ملے گا، کیا شرائط ہے. تو وہ پھر بتاتے ہیں ابھی شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ، اتنا ایڈوانس جمع کرو، یہ چیزیں کرو. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا اتنا آسان سیدھا سادہ نسخہ بتایا، ایک گنڈیری والا، ایک چھابڑی والا، ایک مونگ پھلی والا، ایک مزدور، ایک کلرک، ایک زمیندار، ایک چپڑاسی، سارے کے سارے ہی اس خزانے سے لے سکتے. عورت بھی اس خزانے سے لے سکتی ہے، مرد بھی لے سکتا ہے، گورا بھی لے سکتا ہے، کالا بھی لے سکتا ہے، جوان بھی لے سکتا ہے، بوڑھا بھی لے سکتا ہے، مریض بھی لے سکتا ہے، تندرست بھی لے سکتا ہے. اور ان کا کیا ہے، ایمان لے آؤ اور اعمال صالح کرو، بس چھٹی. ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. سات باتوں پر جو ایمان لانا ہے، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، فرشتوں پر، اللہ کی وعدانیت پر، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اعمال صالح کرنا بالکل آسان ہے. نماز پڑھنا بالکل آسان، روزہ رکھنا بالکل آسان، مالداروں کے لیے حج کرنا بالکل آسان، زکوٰۃ دینا بالکل آسان، نیکی کرنا بالکل آسان، برائی کرنا مشکل. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سادہ اور آسان نسخہ کامیابی کا بتایا کہ اس پر جنہوں نے عمل کیا اللہ پاک نے ان کو کامیابی مرمت فرمائی. بی بی مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں بی بی مریم کے نام سے نازل فرمائی. اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی. وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں, یا بنیا اقیم الصلاۃ, یا بنیا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. وہ باتیں اللہ پاک کو ایسی پسند آ رہی ہے, اللہ پاک اس کو قرآن میں نقل کر. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو استعمال کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں مؤذن بن گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے, غریب آدمی نے اس نسخے کو استعمال کیا تو شیخ الحدیث بن گئے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بین الاقوامی تاجر نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں خوشخبریاں مل گئی, جنت کا ٹھکانہ. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں, دین پر چلنا انتہائی آسان. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب دنیا میں ظہور ہوا, یہ روحانی چاند جب زمین پر اترا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہوئے پڑے تھے. اللہ پاک نے دکھایا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی, اب میرے پیغمبر کی چلے گی, ساری دنیا میں اس کی چلے گی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے تو آس پاس جو دیکھا تو لوگوں کی عجیب زندگی ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, پریشانیاں ہو رہی ہیں, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے. معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, حاجیوں کے قافلے وہ لٹ کر جا رہے ہیں. پیغمبر کی یہ صفت ہوتی ہے, اس کے مزاج میں یہ بات شروع سے ہی ہوتی ہے, اس کو برائیاں اچھی نہیں لگتی, نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جب پیغمبر کو تاج نبوت پہنایا جاتا ہے پھر اسے برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. نہیں, شروع سے ہی پیدائشی طور پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو برائی اچھی نہیں لگتی, گناہوں سے نفرت ہوتی ہے, ظلم سے نفرت ہوتی ہے اور اچھائیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر فکر میں اور اضافہ ہو گیا, پریشانی اور بڑھ گئی, کھانا پانی ساتھ لے کے غاروں میں چلے جاتے, بیٹھے رہتے, روتے رہتے کہ یا اللہ تو نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ زندگی گزار رہے ہیں جانوروں جیسی. جب رونے کی حد ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے تاج نبوت پہنایا اور ارشاد فرمایا, پیارے نبی, اب غاروں میں بیٹھنے کا دور گزر گیا, اب آپ لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں. گھر تشریف لائے تو بڑی پریشانی کا عالم تھا, بدن پر کپ کپی ہو رہی تھی, بخار سا ہو رہا تھا, گھبراہٹ ہو رہی تھی. ہماری اماں جان سے کہا, زملونی, دس سے رونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے سردی لگ رہی ہے, کپ کپی ہو رہی ہے, میرے لیے بستر بچھا دو. اماں جان نے بستر بچھایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. وہ بھی بڑی پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے. تو اس وقت میں ایک بزرگ ہستی تھی, ورقہ بن نوفل, وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. وہ ان کے پاس چلی گئی اور جا کے سارا ماجرا سنایا کہ میرا شوہر ایسے پریشان ہے, اس کی عجیب حالت ہو رہی ہے. اور یہ ورقہ بن نوفل بہت ضعیف شخصیت تھے, عمر ان کی 90 سال سے اوپر تھی, پلکیں ان کی گر چکی تھی. جب کسی سے بات کرتے تو آنکھ کو, پلک کو انگلی سے پکڑ کے کھول کے پھر اسے دیکھتے پھر بات کرتے. اور تورات کے یہ بہت بڑے عالم تھے. جب انہوں نے سارا قصہ سنا تو اس نے کہا, بہن مبارک ہو, مبارک ہو, تیرا شوہر تو اللہ کا پیغمبر ہے, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुन, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी कौम इसको शहर छोड़ने पर मजबूर करेगी, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं भरपूर साथ दूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारी अम्मा जान को दावत दी बकौल मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह कि यहाँ दावत का बोल ख़त्म हुआ और हमारी अम्मा जान ने इस्लाम कबूल कर लिया। दरमियान में एक सेकंड का फासला, अहले मक्का को जमा किया और उनसे इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। तो अहले मक्का ने क्या कहा, आप अमीन हैं, आप सदीक हैं, आप शरीफ हैं, आप हयादार हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में ऐसा हया था कि अरब की कवारी नौजवान दोशीज़ा की आंखों में ऐसा हया नहीं था जैसा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हया था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ दुनिया भर के इंसान, सामने बैठे हुए मक्के वाले और पुकारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आखिरी इंसान, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ किसी कौम के लिए नबी बनाकर नहीं भेजेंगे, किसी इलाके के लिए नबी बनाकर नहीं भेजेंगे, किसी ज़माने के लिए नबी बनाकर नहीं भेजेंगे, किसी मुल्क के लिए नबी बनाकर नहीं भेजेंगे, सारे आलम के लिए और क़यामत तक के इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजेंगे। तो पहले ही दिन से पूरी उम्मत को लिया, पूरी उम्मत। ये कौम जो है ना, कौम ये है फूल और उम्मत जो है वो गुलदस्ता है, बहुत सारे फूल मिलकर फिर गुलदस्ता बनता है, तो सैकड़ों कौमें मिलकर फिर उम्मत बनती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले दिन से जो मेहनत शुरू फरमाई वो उम्मत बने की मेहनत शुरू फरमाई। अगर किसी को यकीन ना आए तो हरमैन शरीफ़ैन में जाकर देख ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम बनाई है या उम्मत बनाई है, दुनिया भर की कौमें हरमैन शरीफ़ैन में आपको मिलेंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावत का अमल शुरू किया और जो है मक्की ज़िंदगी के अंदर ईमान लाना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था जैसा अपने आप को जलते हुए तंदूर में फेंकते। जो ईमान ले आता था मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूट पड़ते थे। बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गर्म रेत पर घसीटा जा रहा है, आले यासिर को सताया जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ओजरी रखी जा रही है, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें जो है वो पहुंचती थी। और वहाँ से अल्लाह पाक का क्या हुक्म था, बदला नहीं लेना, मुकाबला नहीं करना, हाथ बांध के रखो, कुफू एदी को सब्र करो, सब्र करो, सब्र। तो ये दावत का अमल जो है वो शुरू हो गया और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से हदीस की शक्ल में मोती जवाहर लाल और याकूत निकलते, सहाबा कराम उनको गौर से सुनते, आपस में उसको दोहराते और फिर उसको फैलाते, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बातों पर अमल करते और अल्लाह की याद करते। जो कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होता फिर रात को तहज्जुद में उठकर अल्लाह पाक को सुनाते। तो दावत का अमल, तालीम और तालम का अमल, जिक्र और इबादत का अमल और खिदमत का अमल मक्की ज़िंदगी में चल पड़ा, लेकिन छुप छुप के, डर डर के, खौफ के साथ ये अमल हो रहा। और फिर जब अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ हिजरत का تو حضور علیہ الصلات والسلام نے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی. اس سے پہلے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیج دی جنہوں نے ماحول بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. مسجد نبوی کیا تھی؟ صحابہ کرام پتھر ڈھو کر لے آئے, مٹی کا گارا بنا دیا, اور جن انصار کے کھجوروں کے باغ تھے وہ ٹہنیاں کاٹ کے لے آئے, تنے کاٹ کے لے آئے. مستورات کو پتہ چلا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, انہوں نے پیغام بھیجوا کہ اللہ کے رسول ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرمت فرما دی. تو صحابیات جو تھی وہ بھی رات کو عشاء کے بعد وہ بھی کام میں حصہ ڈال دیتی, پتھر اٹھا کے لے آتی, مٹی کٹھی کر دیتی, تو مسجد تعمیر ہو گئی اور یہ چاروں اعمال کھلم کھلا شروع ہو گئے. 9 سال تک صحابہ کرام اس مسجد میں اندھیرے میں نماز پڑھتے, جبکہ دین کی روشنی, اسلام کی روشنی, اس کی کرنیں جو ہیں مشرق, مغرب اور شمال اور جنوب میں پہنچ رہی تھی. علاقوں کے علاقوں سے لوگ اسلام قبول کرتے اور پھر مدینہ منورہ دین سیکھنے کے لیے آتے. 9 سال کے بعد ایک شخص دور کے علاقے کا رہنے والا ہے, وہ مدینہ منورہ تشریف لایا. وہ اپنے ساتھ لالٹین لے کر آیا تھا. اس نے جو دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں, اس نے چراغ جلا دیا. صبح کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا روشنی ہے. صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا کہ ایک شخص دور کا رہنے والا ہے, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے, وہ اپنے ساتھ لالٹین لایا ہے اور اس نے جلا دی ہے. فرمایا اسے پیش کرو, بلاؤ اسے. اسے بلایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ چراغ تم نے جلایا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے جلایا ہے. پیارے نبی اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے, اتنا بڑا کام تو نے کیا ہے. تو یہ چاروں اعمال جو ہے وہ شروع ہو گئے, اسلام ترقی کرنے لگا اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے شروع ہو گئی. آس پاس کے علاقوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے. کفار مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہم تو اس سوچ میں تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے, ختم کریں گے, اور یہ مدینہ منورہ میں جا کے پھل پھول رہے ہیں, چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے. تو ان کے مشورے میں یہ طے پایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے, قافلہ تیار کیا جائے, تجارتی قافلہ ہو, یہ شام کی طرف جائے اور وہاں سے مال خریدے اور بیچے اور خوب مال کمائے, اور اس مال سے پھر ہم تیر و تفنگ خریدیں گے, تلواریں اور نیزے خریدیں گے, ڈھالیں خریدیں گے اور مدینہ منور پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے. یہ اسکیم تھی. چنانچہ بقول ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے کہ 262 کلو سونے کی مقدار کے برابر یہ رقم جو ہے وہ جمع ہوگی. آج کل کے حساب کے مطابق 52 کروڑ روپیہ. ہر عورت نے, ہر مرد نے, ہر جوان نے, ہر بوڑھے نے اس میں حصہ ڈال دیا اور قافلہ تیار ہو گیا. ابو سفیان کو اس کا سالار مقرر کیا گیا, 50 آدمی ان کے ساتھ کر رہی ہے, یہ قافلہ روانہ ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ قافلہ ہے, یہ سکیم ہے اور مسلمانوں کے نیست و نابود کرنے کا یہ سوچ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ قافلہ بچ کے نہ جائے, یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں, آپ جیسا حکم فرمائیں. وہاں ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہمارا راستہ روک کے بیٹھے. उसने एक बड़े मक्कार दगाबाज शख्स को 2000 रुपये रिश्वत दे के और उसको तैयार किया कि तुम मक्के में जाके इत्तला दो कि हमारा काफिला जो है वो खतरे में है। वो ऐसा चालाक आदमी था, उसने क्या किया, ऊंट का कचावा जो है वो उल्टा करके रख दिया और कुर्ता आगे से फाड़ दिया, ऊंटनी की नाक जो है उसको काट दिया, उससे खून बहना शुरू हो गया। ये अरब के दस्तूर में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। जैसे अल्लाह ना करे अभी कराची पे इंडिया हमला कर रहे तो हमारे फौज वाले सायरन बजाएंगे कि अभी अपनी जानों को बचाओ, बच्चों को बचाओ, मालों को बचाओ, हमला हो गया है, बमबारी शुरू हो गई। इस हालत में जब वो मक्के में दाखिल हुआ तो मक्के वालों की चीखें निकल गई, औरतें तक चीखों पुकार करती हुई बाहर निकल आई, क्या हुआ? तो उसने कहा कि तुम्हारा माल भी गया और तुम्हारे आदमी भी गए। फिर एक जंगी लश्कर तैयार हुआ मुकाबले के लिए, अबू जहल की सरकर्दगी में 1000 का लश्कर तैयार हुआ, तीरों तफंग के साथ, खाने पीने सामान के साथ और लौंडियों और औरतों के साथ, ये काफिला यहाँ से चल। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला हुई, तैयारी तो की हुई थी काफिले को रोकने के लिए और उधर से एक लश्कर अभी आ रहा है। फिर सहाबा कराम को जमा किया, कुर्बान जाए सहाबा कराम। अब तकाजे की नौयत बदल गई, पहले काफिले को रोकना था, अब एक जंगी लश्कर से लड़ाई करनी थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब बताओ कौन तैयार है। कुर्बान जाए सहाबा कराम की ऐसी मुबारक हस्तियाँ जिनका जिक्र जो है इंजील में भी और जबूर में भी और तौरात में भी उनका जिक्र आया है, और अल्लाह पाक ने इन रूहों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के लिए पसंद फरमाया। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आप गम न खाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं भी लड़ेंगे, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, हम आपके पीछे भी लड़ेंगे। अगर आप हुक्म दें समंदर से, समंदर में कूद जाओ, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आप हुक्म दें पहाड़ों से छलांगे मारो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप फिक्र न करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, तादाद जो गिनी तो 313 थी। इरशाद फरमाया असहाब तालूत की तादाद असहाब जालूत के मुकाबले में 313 थी और अल्लाह पाक ने उनको फतह नसीब की। अब दोनों लश्कर जो है वो आमने सामने पहुंच गए बदर के मैदान में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह पाक के सामने गिरे और जारी करते रहे और अर्ज़ किया कि या बारी ताला, ये मुट्ठी भर जमात है, अगर ये ख़त्म हो गई क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। या अल्लाह इनकी मदद फरमा, ये भूखे इनको खाना खिला, इनके कपड़े नहीं हैं इनको कपड़े दे, और या अल्लाह इनकी तादाद कम है तो इनको फतह नसीब फरमा। सुबह के वक़्त अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हैं, आके अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, अब तो रोने की हद हो गई, सारी रात अब अल्लाह पाक से मांगते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया, आँखों से आंसुओं की छड़ी चल रही थी, इरशाद फरमाया कि जी अबू बकर, अल्लाह पाक ने मेरे साथ वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें फतह दूँगा। और निशानदेही की, अबू जहल यहाँ जहन्नम रसीद होगा, उतबा यहाँ जहन्नम रसीद होगा, शिवा यहाँ जहन्नम रसीद होगा। अब ये जंग अभी तक शुरू नहीं हुई थी, कबीला बनू खफार के दो शख्स से वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जो देखा दो लश्कर आमने सामने हैं तो उन्होंने कहा कि चलो इनकी लड़ाई होगी, हम तमाशा देखेंगे। वो पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए, वो जो ऊपर तक गए तो उन्हें घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई। ऊपर जो देखा तो बादलों में से एक घोड़ा बुर्राक उतर रहा है और गैब से आवाज़ आई हैजूम नीचे उतर। हैजूम जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम है, बुर्राक का नाम। तो गैर मुसलमान ने भी अल्लाह पाक की मदद को आंख से देख ली। एक का तो दिल फट गया, वो तो वहीं ढेर हो गया, दूसरे ने अपने आप को बचाया, बाद में वो ईमान भी लिया। अब दोनों लश्कर आमने सामने, और ये दुनिया की अजीब तरीन जंग है। एक तरफ एक भाई है, दूसरे तरफ दूसरा भाई है, एक तरफ मामू है, एक तरफ भांजा है, एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है। कबीला कबीले से लड़ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से लड़ रहा है। ये गैरों के साथ लड़ना आसान है, अपनों से लड़ना ये बड़ा मुश्किल होता है। हमारे कोयटे में एक बहुत बड़े सरदार थे कबैली, और वजीर लगे हुए थे, और उनका सेक्रेटरी जो था एक सैयद, तबलीग में वक्त भी लगा हुआ था उनका। इतवार के दिन उनको फ़ोन आया कि शाह साहब मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी से आप बंगले पर आ जाए। इन्होंने कहा जी आज इतवार का दिन है, हमारी भी ज़रूरतें होती है, दफ्तर तो बंद है, ऐसा क्या इमरजेंसी कोई हो गई। उसने कहा दफ्तर का काम नहीं है, मेरा बेटा क्लाशनकोब लेके छत पे खड़ा है मुझे मारने के लिए, और आप आले रसूल हो, आपकी वो बड़ी इज्जत करते हैं, आप आके उसको समझाओ। अब मैं तो सरदार हूँ, वजीर भी हूँ, अभी पुलिस को टेलीफोन कर दूंगा, वो उठा के जेल में डाल देंगे, फिर छुड़ाना भी मुझे ही पड़ेगा, है ना। तो अपनों से लड़ना मुश्किल है। तो इस जंग के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने सगे मामू को अपने हाथ से जहन्नम रसीद की। अबू उबैदा साहबी रसूल हैं बिन जर्रा, वो काफरों की तरफ से उसने हमला किया, बाप ने हमला किया, इन्होंने बचाया, फिर हमला किया, फिर बचाया, तीसरी दफ़ा जो बाप ने तलवार उठाई, इन्होंने खींच के तलवार मारी, बाप की गर्दन वो जा पड़ी। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला का बेटा इनके मुकाबले पर आ गया, बाद में ये ईमान ले आया था, तो अर्ज करने लगा कि अबा हुजूर, बदर में आप मेरे ठीक निशाने पर आ गए थे, और अगर मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया मफहूम कि अगर तू मेरे निशाने पे आ जाता, मैंने तेरे टुकड़े टुकड़े कर देने थे, कि मेरे सामने बेटा नहीं था बल्कि अल्लाह का दुश्मन और अल्लाह का रसूल का दुश्मन था। तो अल्लाह पाक ने फतह नसीब फरमाई, 70 कुफार मक्का बड़े बड़े सरदार वो जहन्नम रसीद हो गए। अब सहाबा कराम ने पूछा कि इनका क्या करें, कफन दफन तो है नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इनको घसीट कर अंधा कुआं है उसके अंदर फेंक दो। सहाबा ने घसीट कर उस कुएं के अंदर फेंक दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर वापस हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के करीब जब गुजरे, खड़े हो गए और उस कुएं पर निगाह डाली, आंखों में आंसू आ गए, और कुएं वालों को मुखातिब किया मफहूम, उस जालिमों तुमने क्या किया, तुम मेरी अपनी कौम के आदमी थे, मेरे रिश्तेदार थे, मैंने तुम्हें कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुमने इनकार कर दिया, मैंने कहा मेरे ऊपर वही का नजूल होता है, तुमने इनकार कर दिया, और मैंने कहा कि अल्लाह वादउला शरीक है, तुमने इनकार कर दिया, अब तुम्हारा क्या हाल है। सहाबा कराम हैरान कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों से बातें कर रहे, उमर रजी अल्लाह तआला नो देख रहे, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आप मुर्दों से बातें कर रहे, ये आपकी बात को सुनते हैं। इरशाद फरमाया उमर सुन, जिस तरह तू मेरी बात को सुन रहा है ना, इस तरह ये भी मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन इनको जवाब देने की इजाज़त नहीं। तो मेरे अजीज़ों और बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने कुफर की कमर को तोड़ के रख लिया, इस्लाम को फतह नसीब फरमाई और इस्लाम तरक्की करने लग पड़ा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 10,000 के लश्कर के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पर हमला आवर हुए, और इनकी सारी का ये हाल था कि सर मुबारक बार बार ऊँटनी के कोहान से लग रहा था कि या अल्लाह तूने ही मदद फरमाई, अकेले तूने ही मदद फरमाई। दस्ते बने हुए थे, किसी की ज़ुबान से ये बात निकली कि अल्यौमल यौमल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज हम उन कांटों का भी हिसाब लेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाए जाते थे, उस ओजरी का भी हिसाब लेंगे, बिलाल अफशी के रेत पर लिटाने का भी हिसाब लेंगे, खबाब के अंगारों पर भूलने का भी हिसाब लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम को जो ये बात पहुँची तो इरशाद फरमाया अल्यौमल यौमल मरहमा, आज रहमत का दिन है, पैगंबर बदले लेने के लिए नहीं आता बल्कि माफ़ करने के लिए आता। और जब ये लश्कर मक्के में दाखिल हुआ, ऐसा ऐलान किया कि आज तक किसी लश्कर ने ऐसा ऐलान नहीं किया, और ना ही क्यामत तक कोई ऐसा ऐलान कोई लश्कर करेगा। इरशाद फरमाया बूढ़े को कत्ल नहीं करना, औरत को कत्ल नहीं करना, बच्चे को कत्ल नहीं करना, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसको कत्ल नहीं करना, जो नौजवान तलवार फेंक दे उसको कत्ल नहीं करना, जो हरमैन शरीफैन में दाखिल हो जाए उसे कत्ल नहीं करना, जो अबू सफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे कत्ल नहीं करना, वो ईमान ले आए। और इरशाद फरमाया, आज मेरा वो ऐलान है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए ऐलान किया था, ला तस्रीब अलैकुम अल यौम, आज सबको मैंने माफ़ कर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी मेहनत फरमाई और सहाबा कराम ने पूरा पूरा साथ दिया, 150 के करीब जमातें और लश्कर तैयार होकर ये अल्लाह पाक के रास्ते में निकले। 25 में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन खुद तशरीफ ले गए, बाकी में सहाबा कराम को अमीर बनाया और अल्लाह पाक के रास्ते में निकाल। अब सहाबा कराम की एक तो ये कुर्बानी है ना, घर छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, कारोबार छोड़ा, ये भी कुर्बानी है, लेकिन इससे ऊंची कुर्बानी क्या है, हरमैन शरीफैन की नमाजों को छोड़ा, 50,000 नमाज का सवाब, 1,00,000 नमाज का सवाब, इससे भी ऊंची कुर्बानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को छोड़ा और दुनिया में फैल गए। अगर वो घरों से ना निकलते और कुर्बानी ना देते तो आज ये इतनी रौनक जो नज़र आ रही है ये कहाँ से नज़र आती। तो सहाबा कराम सारी दुनिया में, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 10 बेटे हैं, 10 के 10 मुल्कों में जो है वो दफन। तो मेरे अजीज़ों और बुज़ुर्गों, और उस वक़्त तबलीग ना ऐसी सवारियाँ थी जैसे आजकल है और ना ऐसी सहूलियात थी जो आजकल है, गधे घोड़े और ऊँटों का सफ़र होता था, मुशक्क़त वाला सफ़र, आगे कुफार तलवारें लेकर खड़े हुए हैं, मुकाबले के लिए खड़े हैं, कोई ईमान लाने को तैयार नहीं होता था। इस हालत में उन्होंने दीन को फैलाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की रोशनी जो है सारे आलम के अंदर फैलाई। तो मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, बल्कि ये तालीम की जगह थी, नमाज की जगह थी, इबादत की जगह थी, खिदमत की जगह थी, जमातों के रुख्सत होने की जगह थी, कारगुजारी वापसी की बात सुनने की जगह थी। तो ये सारे अमाल जो है वो हो रहे थे और सहाबा कराम फिर नमाजों की मशक करते, नमाजों को ऐसा बनाया था जो भी मसला पेश आता नमाज की नीयत बांधते और अल्लाह पाक से वो हल करा लेते, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलम सीखते, उनकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बातें बताते, सहाबा कराम उनको याद करते, उसके ऊपर अमल करते और अल्लाह पाक का जिक्र करते, और आपस में ऐसा सलूक था बकौल मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के, कि अगर मदीने की बस्ती की आबादी 10,000 की लगाई जाए तो हर आदमी के 9,999 हमदर्द थे, एक का बच्चा बीमार तो 10,000 का बच्चा बीमार, एक के बच्चे की शादी तो 10,000 के बच्चों की शादी, ऐसा आपस में जो है वो सुलूक और ऐसा भाईचारा। हालांकि गुर्बत थी, वो बकरे की सिरी जो चक्कर काट रही है 7 घरों में, उससे यही जाहिर होता है माल नहीं था, लेकिन दिल मोहब्बत से भरे हुए थे, आपस में ऐसी मोहब्बत, ऐसा अखलाक, ऐसी रवादारी, हर आदमी जो है अपनी जान निछावर करने के लिए दूसरे के लिए तैयार। तो मेरे अजीज़ों और बुज़ुर्गों, बकौले मौलाना पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के भरे इज्तिमा में उन्होंने इरशाद फरमाया कि सहाबा की तरबियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे की थी, अमीर को यह सिखाया ये माल तेरा नहीं है, तू खजांची है, ये माल अल्लाह ने तुझे दिया है और इसमें दूसरों का हक है, और गरीब को ये बताया कि तूने सिवाय अल्लाह के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, है ना। बकौल मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के कुरान पाक उठाकर देख लो, उसमें देना 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 भरा हुआ है, माँ बाप को दो, गरीबों को दो, मस्कीनों को दो, मोहताजों को दो, मुसाफरों को दो, कैदियों को दो, देना देना, है ना। और आज सारी अदालतें, सारे थाने, सारी कचहरियाँ, सारी कोर्ट्स किससे भरी हुए, लेना लेना लेना, एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है कि ओ जज साहब, ओ डीजी साहब, ओ एसपी साहब, मैंने फलाने की जमीन दबा ली थी और उस वक्त मैं अंधेरे में था और मेरे दिल के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, अब जो है मेरे ऊपर हकीकत खुल गई है। जो किसी की एक बालिश जमीन दबाएगा, क्यामत के दिन 7 तबक काट के उसके गले में डाल दिए जाएंगे। मैंने किसी का पैसे खा लिए थे, उस वक्त मुझे पता नहीं था, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं देना चाहता हूँ, लेकिन वो आदमी मिल नहीं रहा। एसपी साहब आप उसको तलाश कर लें, तहसीलदार साहब आप उसको तलाश कर लें, मैं उसकी ज़मीन। एक केस भी ऐसा नहीं, सब लेना लेना लेने से भरे है ना। एक दफ़ा हमने ईद की नमाज पढ़ी रेवंड में, एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा यहाँ बयान तो बुज़ुर्ग करते हैं लेकिन बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि तुम अपनी कारगुजारी सुनो। तो कहने लगा मैं सखर के रहने वाला हूँ और मैं पहले हिंदू था और हिंदू बिरादरी का चौधरी था, मैं किस तरह मुसलमान हुआ ये बता दो। कहते कुछ मुसलमान नौजवान मेरे से सौदा ले जाते थे, अड़तियों का कारोबारी हूँ मैं, 4-5 महीने वो नज़र नहीं आए, फिर जो नज़र आए तो मैंने देखा उनकी शक्लें तब्दील, कपड़े तब्दील, बात का अंदाज तब्दील, मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे कहा तुम हज पर गए थे, नज़र नहीं आए? उन्होंने कहा नहीं, हम हज पर नहीं गए थे, हम तो रेवंड गए थे, 4 महीने लगा के आए। फिर वो नौजवान कहने लगे सेठ साहब हमारा आपके साथ बड़ा ज़रूरी काम है। मैंने कहा भी बताओ क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हमारा लेन देन था, उस लेन देन में हमने आपके इतने हज़ार रुपये खाए हुए हैं जो आपको पता नहीं है। कहते मैंने रजिस्टर खोला, देखा उनके जिम्मे कोई पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा कि भाई मेरे खाते में तो कोई पैसे नहीं। उसने कहा वो आपको नहीं पता, वो हमें पता है, और पैसे अभी हमारे पास नहीं है, पैसे जो थे वो तो हम तबलीग में लगा के आ गए, हमने हिसाब बना लिया है, आप अपने रजिस्टर पर चढ़ा लें, हम आपको किस्तों में पैसे वापस करेंगे। कहते मैंने उनको कहा कि तुम मुसलमान पहले से थे या रेवंड में जाकर कलमा पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं हम तो जद्दी पुश्ती मुसलमान। बोला पहले आपको पता नहीं था? बोला पता तो था लेकिन इस्तेज़ार नहीं था। अब डाकू से आप ये पूछे ना कि डाका डालना कैसा है तो वो क्या कहेगा? सवाब है, ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा गुनाह है। और उसे कहो कि नमाज पढ़ना कैसा है तो ये कहेगा कि गुनाह है, ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा सवाब है, नमाज पढ़ना सवाब है, डाका डालना गुनाह है, लेकिन डाका डाल रहे हैं नमाज नहीं पढ़ रहा, इस्तेज़ार उसका नहीं हुआ। सुना तो मेरे अजीज़ों और बुज़ुर्गों, कहते हैं बुज़ुर्ग अभी ये फरमा रहे हैं कि देखो भाई एक मुद्दत हो गई, 80-90 साल हो गए ये तबलीग में चलते हुए, चिल्ले लगाते हुए, 4 महीने लगाते हुए, अब बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं अब दिल और दिमाग तबलीग को दे दो और नंबर एक पर तबलीग को कर दो। ये सारी दुनिया में जितनी भी जमातें चल रही हैं ये 4 काम कर रही हैं, दावत का अमल चल रहा है, तालीम और तालुम का अमल चल रहा है, जिक्र इबादत का अमल चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन हमारे ये 4 अमल कच्चे हैं, सहाबा कराम के पक्के थे। इन कच्चे अमलों के ऊपर सारी दुनिया में तब्दीली आ रही है, लाखों चोर डाकू अल्लाह पाक ने ताजत गुजार बन, औरतें पर्दे में आ गई, लाखों लोगों ने अपने कारोबार ठीक कर गए, लाखों औरतें जो है उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो इस कच्चे अमल से ये तब्दीली आ रही है, और अगर असल पर हम आ जाएं, इस काम को मकसद बना लें, फिर कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो आए। तो कहते हैं जब आदमी किसी काम का अज़म कर लेता है ना, फिर अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। बड़े हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना सईद अहमद खान साहब से इरशाद फरमाया सारी दुनिया की नीयत कर लो। अर्ज़ किया जी मैंने कर ली सारी दुनिया की नीयत। फिर एक मौके पर बयान फरमा रहे थे तो इरशाद फरमाया जब मैंने सारी दुनिया की नीयत की थी मेरी जेब में 4 आने थे, और जब बयान फरमा रहे थे तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 98 मुल्कों का सफ़र हो चुका है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो बाकी मुल्क भी पूरे हो जाएंगे। फिर पुराने साथियों ने बताया कि मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब के पूरी दुनिया के 3 सफ़र हुए, ये किसने किए? जिसकी जेब में कितने थे? 4 आने। ये तबलीग पैसे पर है या कबूलियत पर है? हाँ, कहते अल्लाह पाक से अपने आप को कबूल फरमा लें और बस अल्लाह पाक जो है रास्ते जो है वो खोल देंगे, और जिस चीज़ का आदमी आज़म कर लेता है अल्लाह उसके लिए रास्ते जो है वो खोल देते हैं। और तबलीग इतनी आसान है, इतनी आसान है कि कुछ ना पूछे, सादे से सादा। बैरून मुल्क में एक जोड़ था पुरानों का, बैरून मुल्क, वहाँ पर एक नया पश्तो बोलने वाला आ गया और एक नया अरब नौजवान आ गया। अब जब इज्तमाही अमल ख़त्म होता तो पश्तो वाला और ये अरब जो है दोनों एक कोने में चले जाते। अरब जो है वो सिगार पीता था और पश्तो वाला नस्वार खाता था। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पश्तो वाला अरबी नहीं जानता, अरब जो है वो पश्तो नहीं जानता। तो पश्तो वाले ने हिम्मत की, उसने कहा या शेख तीन चिल्ले रायवंड पाकिस्तान। भाई इतनी बात की, इतनी दावत दी, बात आई गई होगी। दो तीन साल के बाद ये पश्तो वाला हरमैन शरीफैन गया हुआ था, तो वहाँ पीछे से आके किसी आदमी ने इसको पकड़ लिया। इसने जो मुड़ के देखा तो एक बड़ा खूबसूरत और जवान है, अरब है, इतनी दाढ़ी रखी हुई है। इसने उसे कहा मैंने तुझे पहचाना नहीं है। उसने उस मुल्क का नाम लिया, उस जोड़ का नाम लिया और उसने कहा कि आना सिगार व अंतुम नस्वार, तीन चिल्ले रायवंड पाकिस्तान। मैंने तीन चिल्ले लगा लिए। तो अल्लाह ऐसे रास्ता खोलते हैं ना। एक सरदार था फ्रंटियर का, बड़ा खूबसूरत नौजवान, लेकिन दाढ़ी नहीं रखता था, हालांकि पठान अक्सर दाढ़ी रखते हैं। और फिर ऊपर से और एक बात ये थी कि इसकी बीवी को भी दाढ़ी से चिढ़ थी, उसको भी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती थी। तबलीग वालों के करीब आया, सरोजे लगाए, चार महीने में चला गया। अब इतनी दाढ़ी रख ली, अब जब वापस आया अब सोच रहा है कि बीवी से झगड़ा तो होगा। रायवंड वालों ने कहा भाई झगड़ा नहीं करना, घर में मिलकर चलना है, मोहब्बत से चलना है, सुलूक से चलना है, नरमी से चलना है। अब ये जो घर पहुंचा इसने सलाम किया, बीवी ने जो दाढ़ी देखी वो लाल पीली होके गुस्से से कमरे में चली। ये उसके पीछे गया, उसको जाके कहता भाई बात सुन। वो बात ना सुने, भाई बात सुन, तेरे साथ ज़रूरी बात करनी है। वो बात ना सुन, इसने कहा तेरे साथ बड़ा ज़रूरी मशवरा करना है, तू सुन तो सही। उसने कहा क्या मशवरा करना है? इसने कहा वो फलाना मालिक साहब है ना, उसकी जवान कवारी लड़की बैठी हुई है, मैंने उनको निकाह का पैगाम दिया है। तो मलक साहब ने एक शर्त रखी है। बीवी ने कहा क्या शर्त रखी है? इसने कहा मलक साहब ने ये शर्त रखी है कि दाढ़ी मुंडा दो फिर लड़की दूंगा, तो इस बारे में तेरा क्या मशवरा है? तो बीवी कहने लगी दा सुन्नत रसूल इस्ताफ महमद डर शश कारा केस। उर्दू वाले समझे हैं भाई, हाँ, ये सुन्नत रसूल तेरे चेहरे पर बहुत खूबसूरत लगती है, तो रास्ता निकल आया। तो झगड़ा नहीं, तबलीग बिल्कुल आसान है। एक गंडरी वाला है, एक छाबड़ी वाला है, एक मूंगफली वाला है, एक चपड़ासी, एक चौकीदार, वो सारे ही इस काम को कर सकते। तो किस किस भाई का इरादा है जी सारी दुनिया में फिरने का? माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह आपका आना इंतहाई कबूल फरमाए भी। तो कहते हैं नीयत कर लेंगे ना और अल्लाह से मांगते रहेंगे। एक बात और सुन ले, बात ख़त्म करते हैं। हज़रत अली करमल्ला वजू का एक ऐसा प्यारा, ऐसी प्यारी बात है, सोने के पानी से लिखे तो वो ख़त्म नहीं होगा। क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह ऐसा नहीं करता कि मांगने का दरवाज़ा खोले और देने का दरवाज़ा बंद कर दे, तौबा का दरवाज़ा खोले और मग़फ़रत का दरवाज़ा बंद कर दे, शुक्र का दरवाज़ा खोले और ज्यादती का दरवाज़ा बंद कर दे, ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। तो भी कौन कौन अल्लाह से मांगेगा सारी दुनिया में फिरने के लिए? अल्लाह इंतहाई कबूल करे। www.darsequran.com